तो ये ओम शांति जागृति लाता है कि क्या मेरे मन वचन कर्म में हार्मनी है, यूनिटी है। अगर अंदर ही यूनिटी न हो तो जीवन तो कितना अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसलिए ओम शांति ये शब्द हमें जागृत करता है। आज का जो विषय है स्वयं की पहचान, खुद खुद से परि क्यों इसकी आवश्यकता है, इतना तो हम भारतवासी हर एक जानते ही है, मानते हैं कि शरीर के अंदर चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है जिसको आत्मा कहा गया, और वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और क्या जानना है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जान करके फायदा क्या, प्राप्ति क्या, क्योंकि इंसान अपना समय वहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ से कुछ प्राप्ति। अगर कोई फायदा ही न मिले तो जीवन का अमूल्य समय हम वहाँ क्यों इन्वेस्ट करें। तो जीवन के अंदर आत्मा का ज्ञान क्या एक क्वालिटी ऑफ लाइफ में अंतर ले आता है या क्या प्राप्ति कराता है। महाभारत की बात याद आती है कि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा था जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना नर्वस हो गया, उदास हो गया, हताश हो गया कि उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे, उसका आत्मविश्वास समाप्त हो गया? या जब भगवान ने गारंटी ली थी विजय तेरी निश्चित है, उसके बाद भी अगर ऐसी मनोदशा हो तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? न आत्मविश्वास क्षीण हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम था। लेकिन जब ऐसी मनस्थिति हो गई जिसको आज के युग में कहेंगे डिप्रेशन की स्टेज, तो उस समय भगवान ने सबसे पहला ज्ञान उसको कौन सा दिया? दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया और आत्मा की शाश्वतता बताई, महसूस कराया कि तुम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। उतना ही नहीं, लेकिन आत्मा की वो शाश्वतता क्या है, तो कहा न अग्नि उसको जला सकता, न हवा उसको सुखा सकती, न तलवार उसको काट सकता, न पानी उसको भिगो सकता है। यानी प्रकृति के कोई भी तत्व या बाह्य कोई भी इस दुनिया की स्थूल चीजें आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती है। उसके बाद अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो योग सिखाता हूं जिस योग से तुम राजाओं के राजा बनोगे। राजाओं के राजा अर्थात सर्वप्रथम इंद्रियों के ऊपर राज्य प्राप्त करना, और जिसने इंद्रियों को जीता है वही अपने मन को भी वश में कर सकता है, मन के ऊपर भी अधिकार प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए गीता के अंदर हर अध्याय योग है, सांख्य योग से लेकर के या विषाद योग से लेकर के 18 अध्याय, हर अध्याय भगवान ने योग सिखाया। वो योग कौन सा था? क्योंकि आज की दुनिया के अंदर योग योगा हो गया और योगा सीमित हो गया फिजिकल एक्सरसाइज या आसन प्राणायाम तक। लेकिन जब भगवान ने अर्जुन को योग सिखाया तो कहीं पर भी एक्सरसाइज नहीं सिखाई, कहीं पर भी आसन या प्राणायाम नहीं सिखाया, फिर भी हर चैप्टर योग है। तो वो योग कौन सा था? योग का सरल अर्थ अगर लिया जाए तो योग माना जोड़, जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, तो योग माना कनेक्शन, संबंध, मिलन। मनुष्य का संबंध अनेकों के साथ अनेक स्तरों पर रहता है। जब मनुष्य का संबंध भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है तो उसको कहेंगे भौतिक योग है। जब व्यक्ति का संबंध समय के साथ होता है और कोई कार्य अचानक समय पर हो जाए तो यही कहेंगे समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। मनुष्य का संबंध मनुष्य के साथ है और जब किसी व्यक्ति से मदद मिल जाती है समय पर तो यही कहते हैं ये व्यक्ति का सहयोग था। योग निरंतर चलता है लाइफ में। जब कोई व्यक्ति के ऊपर विशेष उसके इष्ट की कृपा हो जाती है तो यही कहते भक्ति योग है। लेकिन राजयोग, एक सर्वश्रेष्ठ योग, आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ योग का अनुभव करने के लिए भी आत्मा का भी संपूर्ण ज्ञान चाहिए और पिता परमात्मा का भी संपूर्ण ज्ञान चाहिए। जैसे कहा कि आत्मा की वास्तविकता में हम इतना तो सभी जानते हैं, मानते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, और क्या जानना है। तो ये जीवन भी एक योग है जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। अकेला शरीर है तो जीवने नहीं कहेंगे, अकेली आत्मा है तो जीवने नहीं कहेंगे। जीवन माना जहां शरीर और आत्मा का संबंध होता है। इस जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना ये 5 तत्व, और इसीलिए शरीर जीवन जीने के लिए वही 5 तत्वों की मांग करता है। आज ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। पानी चाहिए क्योंकि 60-70% शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। इंसान जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। एक्सेस नहीं पीते हैं कि कल के लिए चलेगा, शरीर रखता भी नहीं है, फेंक देता है। तो ये 5 तत्व ये शरीर की वास्तविकता है और इसीलिए कुदरत ने सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए ये 5 तत्व एक समान बनाकर दे दिए। कोई भेदभाव नहीं किया कि भारत वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगा, विदेश वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी होगी, या अमीरों को अलग क्वालिटी का मिलेगा, गरीबों को अलग क्वालिटी की मिलेगी, या हिंदू धर्म वालों को अलग मिलेगा, दूसरे धर्म वालों को अलग मिलेगा, एक समान। ठीक इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, क्या आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए? शरीर को तो 5 तत्व चाहिए, आत्मा को शरीर में जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? या समझते कि आत्मा निर्लेप है, उसको कुछ नहीं चाहिए? नहीं, आत्मा को भी चाहिए। क्या चाहिए? तो शरीर और आत्मा का ये संयोग, शरीर 5 तत्व का बना हुआ, तो आत्मा की वास्तविकता क्या है? आत्मा अर्थात 7 गुणों का एसेंस, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज, उसको कहेंगे आत्मा की वास्तविकता। शरीर को 5 तत्व चाहिए, तो आत्मा को जीवन जीने के लिए 7 गुण चाहिए। इसीलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतोगुणी है, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। वो 7 गुण कौन से हैं जो सारे संसार के आत्माओं को चाहिए? कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी भाषा के हो, कोई भी देश के हो, हर इंसान को जैसे 5 तत्व जीने के लिए आवश्यक है, ऐसे जीवन जीने के लिए ये 7 गुण भी चाहिए। उसमें सबसे पहला गुण है ज्ञान। बच्चा जब पैदा होता है और रो रहा है और उसके सामने का आवाज करने वाला खिलौना रख दो, वो चुप हो जाएगा और ये देखने लगेगा कि आवाज कहां से आ रही है, जिज्ञासा। जब वो बोलना भी नहीं सीखा है तब से लेकर के ये जिज्ञासा, तो ज्ञान ये सबसे पहला गुण है, ये सबसे पहली वास्तविकता है आत्मा की। उसको जानने की जिज्ञासा हर वक्त बनी रहती है। लेकिन और बचपन से इसीलिए प्रार्थना में यही सिखाया जाता है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु, अज्ञान से ज्ञान की ओर। तो आत्मा की वास्तविकता ज्ञान स्वरूप, ये सबसे पहली क्वालिटी है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसमें ज्ञान आता है या अज्ञान आता है, क्या कहेंगे? ज्ञान की वृद्धि होती है या अज्ञान की वृद्धि होती है? अज्ञान आता है। कैसे? मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वो है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन लाइफ। और दिनों दिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसका अहंकार ही तो बढ़ता है, अभिमान ही तो बढ़ता है। आज एक छोटे बच्चे का भी ईगो देखो कितना होता है। तो ज्ञान की ओर जाने के बजाय, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है, अज्ञान इंसान को अभिमानी बनाता है, इसलिए कहा कि हमारा ज्ञान बढ़ता है या अज्ञान बढ़ता है। तो जो हमारी वास्तविकता है उसके दूर जा रहे हैं। और इसलिए जहां ईगो क्लैश होता है दुनिया में, कितने संबंध टूटते हैं, कितने परिवार टूट रहे हैं इस अज्ञान के कारण। तो ज्ञान कहां आया? व्यक्ति के जीवन में अज्ञान ही तो बढ़ रहा है। किसी ने बहुत सही कहा है कि दुनिया की लाइब्रेरी से सारे ज्ञान की पुस्तकों को अगर इकट्ठा किया जाए और उसकी होलिका जलाई जाए तो द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट। और सही में आज यही हो गया है। व्यक्ति ने जो ये ज्ञान हासिल किया है उससे अहंकार की गर्मी जरूर बढ़ गई, व्यवहार में रोशनी नहीं आई है। एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये रोशनी कहां है? तब कहा कि ज्ञान कहां बढ़ा, अज्ञान ही तो बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए ज्ञान माना समझ, बेसिक समझ, लेकिन आज वह बेसिक समझ से भी दूर होता जा रहा है। तभी तो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। ज्ञान कहां है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो आ रही है, अज्ञान ही तो बढ़ रहा है। दूसरी क्वालिटी आत्मा की है, वो है पवित्रता, शुद्धता। जिस तरह बाह्य शुद्धि आवश्यक है तो आंतरिक शुद्धि भी तो जरूरी है, आत्मा की शुद्धि। और इसीलिए इंसान जहां शुद्ध वातावरण है वहां एंजॉय करता है, अच्छा लगता है। मंदिर में क्यों जाते हैं? बहुत शुद्ध वातावरण है, थोड़ी देर के लिए भी आत्मा उस वातावरण में जब जाती है तो शांति महसूस करती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितना इनोसेंट, कितना प्योर होता है, ये उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। अर्थात हम सबकी भी ओरिजिनल आइडेंटिटी वही प्योर स्वरूप है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उस शुद्धि से दूर अशुद्धि की ओर आगे बढ़ता है। और अनेक प्रकार की अशुद्धियां जीवन के अंदर आ जाती है, जिसको आज के युग में कहते कमजोरी। भाई मेरे में कमजोरी आ गई है, कहीं गुस्से की कमजोरी है, कहीं लोभ लालच की कमजोरी है, तो कोई ना कोई कमजोरी से जीवन भर जाता है। तो जो प्योर आइडेंटिटी है, एक बच्चा कितना निश्चल, निर्वैर, निर्भय क्यों है? क्योंकि प्योर है। लेकिन जितनी अशुद्धि जीवन के अंदर आने लगी, आत्मा में प्रवेश हो गई, तो भय भी आ गया, छल भी आ गया, सब अशुद्धि आ गई। तो हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी से कितना दूर हो गए। और इसीलिए कहा कि व्यक्ति थोड़ी देर के लिए भी उस प्योर एटमॉस्फेयर में जाना चाहता है। कहते बहुत अच्छा लगा। अब आप पिछले दो दिन से आए हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कई कॉन्फ्रेंसेस में आप गए होंगे, ऐसी क्या खास बात है यहां पर जो अच्छा लग रहा है? तो कहते यहां के वातावरण के अंदर जो शुद्धि है, प्यूरिटी है, वो अच्छी लग रही है, शांति दे रही है। मन को शांत कर रही है। ज्ञान हो, शुद्धि हो, तो तीसरी क्वालिटी है प्रेम। लेकिन जहां अहंकार हो, अशुद्धि हो, वहां प्रेम कभी पनप सकता है? कभी नहीं पनप सकता। और प्रेम की जगह आज क्या आ गया? स्वार्थ आ गया। और इसीलिए व्यक्ति जब ऊब जाता है तो क्या कहते हैं, दुनिया बड़ी स्वार्थी है, बड़ी स्वार्थी है। और हर इंसान को क्या चाहिए? प्रेम ही तो चाहिए। एक बच्चे को भी प्यार चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग के साथ भी जब कोई प्यार से व्यवहार करता है अच्छा लगता है। ये नहीं कि बड़े बुजुर्ग ने सारा जीवन बहुत प्यार पाया, अब बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा? चलेगा नहीं। हर इंसान को प्यार चाहिए। अरे पशु पक्षियों को भी प्यार चाहिए, वो भी निस्वार्थ प्यार चाहिए, अनकंडीशनल लव जिसको कहा गया। लेकिन आज की दुनिया क्या है? आज की दुनिया में अगर कोई बहुत प्यार से बात करने लगा ना, तो भी डर लगता है, भाई इतना प्यार से क्यों बात कर रहा है ना? छोटे बच्चे के साथ भी आप बहुत प्यार से बात करने लगो, बेटा तू तो बहुत अच्छा है, उसकी महिमा करना शुरू करो, तो बच्चा भी कहेगा मतलब की बात करो, क्या है ना? क्या चाहते हो? कुछ करवाना चाहते हो मेरे से? आज इतनी पॉलिश क्यों हो रही है? तो एक बच्चा भी समझ जाता है कि ये मतलब का प्यार है। और हर इंसान क्या चाहता है? निस्वार्थ प्यार चाहता है।
Sorry for the inconveniences. English translation is now available at the frequency 105.
तो इसलिए कहा कि ज्ञान चाहिए, शुद्धि चाहिए और निस्वार्थ प्रेम चाहिए। लेकिन जहां अहंकार हो, अशुद्धि हो, स्वार्थ हो, तो शांति कहां है? शांति का आधार तो ये तीन बातें हैं। लेकिन ये तीन बातों से हम कितने दूर चले गए हैं, इसलिए आज जीवन के अंदर अशांति है, शांति नहीं है। व्यक्ति अकेला भी बैठा होगा तो भी कहेगा मन शांत नहीं है। और हर इंसान क्या चाहता है? शांति चाहिए। कौन सी शांति चाहिए? हमें स्मशानी शांति नहीं चाहिए। हमें कर्म करते हुए मन की स्थिति शांति वाली हो, ये चाहिए। लेकिन उसका आधार जहां अंडरस्टैंडिंग हो, जहां शुद्धि हो, निस्वार्थ प्रेम हो, वहां मन रिलैक्स्ड रहता है। और जहां ये चारों बातें हैं, वहां जीवन में सच्चा सुख है। आज सुख कहां है? सुख नहीं है। सारे सुख सुविधा के साधन जरूर है, लेकिन सुख नहीं है। डनलप के गद्दे पर सोने के बावजूद भी व्यक्ति को नींद नहीं आती है, दवाई लेनी पड़ती है, स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, तो सुख कहां है? क्योंकि सुख के लिए तो ये चार बातें चाहिए, वही नहीं है तो सच्चा सुख भी नहीं है, सुकून नहीं है लाइफ में। पांचों बातें हैं, वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। आज आनंद तो छोड़ो, जो फर्स्ट स्टेप खुशी चाहिए वो खुशी भी नहीं है। आज खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है, घर में हंस नहीं पाते। कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई है, घर में मुस्कुरा नहीं सकता है। घर में अगर मुस्कुरा दिया तो सबसे पहले तो घर वाले पूछते, क्या बात है आज इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। और अगर व्यक्ति अपनी मुस्कुराहट का रहस्य बताना नहीं चाहता है और कह दिया कि क्यों बस ऐसे ही मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा नहीं सकते हैं क्या, तो घर वाले ही क्या कहेंगे, आर यू ओके, ठीक है। माना ये दुनिया की मान्यता हो गई कि हर मुस्कुराहट के लिए भी एक कारण होना चाहिए, बिना कारण व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है। कैसी लाइफ हो गई है हमारी, जबकि एक बच्चा मुस्कुराता है तो उसको कोई वजह नहीं चाहिए, कोई पूछता नहीं है आर यू ओके। तो हमारी नेचुरल आइडेंटिटी कौन सी है, मुस्कुराना। लेकिन आज मुस्कुराना भूल गया है इंसान। ऑफिस में जाता है अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के, तो ऑफिस में सारे लोग एक दूसरे को इशारा करने लगता है, अरे क्या बात है आज सर बड़े खुश हैं, जो काम करवाना है करवा लो, हो जाएगा। लोग एडवांटेज लेना चाहते हैं, इसलिए भी व्यक्ति ऑफिस जाता है तो टाइट होकर के जाता है, मुस्कुराना नहीं, कोई एडवांटेज न ले ले। माना हमारी लाइफ कैसी हो गई है, कई दिनों के बाद कई लोग आते हैं यहां पर, कहते हैं कई दिनों के बाद हम मुस्कुराए हैं, हमें शांति वाली नींद आई है। एक बहन आई, कहा 12 साल से मैं गोलियों के आधार से सोई हूं, पहली बार कल मैंने एक पीसफुल नींद क्या होती है उसका अनुभव यहां किया, 12 साल से नींद नहीं किया, मन शांत नहीं, मुस्कुराना भूल गई थी। कहा जैसे 12 साल के बाद मैं आज पहली बार मुस्कुराई, खुशी हुई है मुझे। तो हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी से कितना दूर हो गए हैं, है ना। तो इसीलिए कहा खुशी तो दूर, आनंद तो दूर, खुशी भी नहीं है। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, आनंद की प्राप्ति। इसीलिए कई बड़े बड़े महात्माओं ने अपने नाम के साथ आनंद जोड़ दिया कि, और कोई ना कोई वैल्यू को अटैच किया। किसी ने कहा दयानंद, भाई दया की वैल्यू को लेकर चलेंगे तो आनंद का अनुभव होगा, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट ब्लिस। वह अनुभव करना चाहता है कि वो आनंद क्या होता है, तो सोचा दया की वैल्यू को लेकर चलेंगे तो आनंद होगा। किसी ने कहा मुक्तानंद, मुक्त रहो तो आनंद का अनुभव होगा। किसी ने कहा नित्यानंद, नित्य आनंद की स्थिति में रहो। किसी ने कहा सत्यानंद, सत्य की वैल्यू को लेकर चलो तो आनंद होगा। लेकिन क्या एक वैल्यू को लेकर चलने से वो आनंद अनुभव होगा। आनंद का आधार तो ये पांच बातें हैं, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति और सुख, तब व्यक्ति के जीवन में आनंद होगा। और जहां ये छह बातें हैं वहां शक्ति। आज हर इंसान को क्या चाहिए जीवन में, शक्ति चाहिए। भगवान के मंदिर में जाकर इंसान क्या मांगता है? हे प्रभु शक्ति देना, यही मांगता है ना? क्या और कुछ मांगा नहीं, शक्ति दो। कौन सी शक्ति चाहिए? किसी से लड़ाई करने की नहीं, आत्मशक्ति चाहिए। और वो आत्मशक्ति, विल पावर कहां से आएगा? ये छह गुण अगर हो तो विल पावर आएगा, क्योंकि ये छह गुण नहीं है, ये छह शक्ति है। पावर ऑफ नॉलेज या पावर ऑफ विजडम, पावर ऑफ प्योरिटी, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ हैप्पीनेस, ये सारे पावर्स हैं। तब ये आत्मशक्ति अंदर में वृद्धि होने लगेगी। तो ये सात गुण ये हर इंसान को चाहिए। क्यों? क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है। हम है ही सत्वगुणी आत्मा, और ये सत्वगुण अजर अमर अविनाशी है। इसलिए कहा आत्मा अजर अमर अविनाशी है। दूसरे शब्द में कहूं तो ये सात गुण ये आत्मा की बैटरी है, लेकिन आज के युग में ये बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो गई है। अब उसको चार्ज कैसे करें? चार्ज करने का तरीका क्या है? अनोइंगली हमने चार्ज करने का तरीका एडॉप्ट किया। अनोइंगली कौन सा तरीका एडॉप्ट किया? कई तरीके एडॉप्ट किए। सबसे पहला तरीका जो है, जो मनुष्य जीवन में एडॉप्ट हुआ, वो है कि किसी न किसी रीति से अपेक्षा रखी संबंधों में। ये व्यक्ति मुझे समझे, ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, ये व्यक्ति मुझे शांति दे, ये व्यक्ति मुझे खुशी दे, तो व्यक्तियों से अपेक्षा रखी कि व्यक्ति थोड़ा भी दे देगा ना तो बस चार्जिंग हो जाएगा। मिला? व्यक्तियों से मिला? नहीं मिला। क्यों? क्यों नहीं मिला? क्योंकि जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है तभी तो मैंने दूसरों से अपेक्षा रखी, तो उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज करेगा बताओ? कर सकता है? और फिर व्यक्ति क्या कहता है? अरे थोड़ी सी खुशी तो चाहिए, हमने कोई धन दौलत महल माड़ी थोड़ी चाहिए है, थोड़ी सी खुशी इतना भी नहीं दे सकते है क्या? लेकिन हो तब तो दे, है ही नहीं तो क्या देंगे? अरे भाई थोड़ा सा प्यार ही तो चाह, और थोड़ी कुछ चाह है, थोड़ा सा प्यार भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हो तब तो दे। अरे लेडी डायना थी, प्रिंसेस थी, भौतिक सुख सुविधा के साधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन में खुश थी। क्या कमी थी? प्रेम, प्रेम की कमी, प्रेम का अभाव। और उसी प्रेम के पीछे सब कुछ छोड़ भी दिया, उस प्रिंसेस के लेबल को भी छोड़ दिया, और उसी में अंत हो गया, उस प्रेम की चाहना में। फिर भी प्रेम नहीं मिला। तो अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सबकी बैटरी डिस्चार्ज है, और इसीलिए उनसे अपेक्षा रखना माना क्लैशेस ही होना है ना? सुमधुरता तो होगा नहीं है। तब व्यक्ति ने अनोइंगली दूसरा तरीका अपनाया। कौन सा तरीका अपनाया? कर्म करो। इसलिए कर्म किया। आज व्यक्ति धन कमाता है। धन चाहिए जीवन में? क्यों चाहिए? धन कमाते हैं ना, क्यों चाहिए? क्योंकि सोचता है धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे, इसीलिए धन कमाते हैं। एक करोड़पति को पूछ लो, सुख शांति आ गई, क्या कहेंगे? भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है, क्योंकि धन कोई माध्यम नहीं है जो सुख शांति को खरीद सके। इसलिए धन आ जाता है, सुख शांति नहीं आती है। कई लोग समाज सेवा करते, पूछो समाज सेवा क्यों करते हो, कहते शांति मिलती है, खुशी मिलती है, किसी की सेवा करने से खुशी मिलती है। पूछो मिली तो क्या कहते हैं, अरे बहुत पॉलिटिक्स है, समाज सेवा में भी इतनी पॉलिटिक्स आ गई है, खुशी कहाँ, पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं। कई लोग शादियों में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, पूछो भाई शादियों में क्यों जाते हो, पार्टीज में क्यों जाते हो, कहते समाज में रहते हैं तो जाना पड़ता है। अरे भाई क्यों जाना पड़ता है, तो कहेंगे तभी तो हमारा सबके साथ प्यार भरा संबंध बना रहे, उसके लिए जाना पड़ता है। पूछो बना, तो क्या कहते हैं, एक को खुश किया दो नाराज हो गए, बना कहां, बिगड़ता ही जा रहा है। कई लोग गंगा स्नान करने जाते, पूछो गंगा स्नान क्यों कर रहे हैं, कहते आत्मशुद्धि के लिए। आत्मशुद्धि हो गई गंगा स्नान करने से? अरे इतना सहज तरीका होता था आत्मशुद्धि के लिए, फिर तो जेल बनाने की जरूरत नहीं, सारे क्रिमिनलों को एक डुबकी लगवा दो, शुद्ध हो गए, छोड़ दो। जो पानी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता है तो आत्मशुद्धि कैसे कर सकता है? तो इसीलिए कहा विभिन्न तरीके अपनाए, विभिन्न कर्म किए। कई सत्संगों में जाते हैं, पूछो सत्संगों में क्यों जाते, कहते ज्ञान प्राप्ति के लिए। अरे एक घंटा सत्संग सुनने के बाद जब इंसान घर में आता है और अपने कमजोरियों के वश होता है तो बच्चे भी घर में पूछते हैं, आप सत्संग में गए थे ना, यही सुन के आए क्या, यही सुन के आए क्या? तो ज्ञान कहाँ आया, कितने सत्संग कर लिए, विभिन्न कर्म किए लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हुई, डिस्चार्ज ही होती गई। तब अननोइंगली तीसरा तरीका अपनाया, कौन सा, भगवान को याद करो, ही इज द सोर्स, उसी से प्राप्त होगा। इसलिए भगवान से भी हमने ये सात बातें ही मांगी। सबसे पहले कहा अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। दूसरा कहा मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे, प्रभु तू साफ कर देना। भगवान भी पूछता है कब तक मैं साफ करता रहूं, कब तक तू मैला होता रहेगा, तुम भी तो कुछ पुरुषार्थ करो। अब उसने भी साफ करना छोड़ दिया, इसलिए मैलापन बढ़ता जा रहा है। फिर तीसरा कहा तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद भी मिल जाएंगी तो जीवन जीने के लिए काफी है। चौथा कहा हमको मन की शांति देना, हे प्रभु शांति दो, मांगते रहे। जब मांगने पर भी नहीं मिला तो उसको उसका कर्तव्य याद दिलाया। पांचवी बात जो कही वो कर्तव्य याद दिलाया कि हे प्रभु तू हरि है, मेरा दुख हरो सुख दो, तू ही तो हरने वाला है। उसका कर्तव्य याद दिलाया कि भगवान तेरा कर्तव्य क्या है, दुख हर के सुख देना, हे प्रभु सुख दो। छठा कहा तू सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद दो, याद दिलाया ये तेरा कर्तव्य है, तू सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद दो। और फिर भी भगवान से नहीं मिला तो लास्ट में तो धमकी दे दी, कि इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कभी कम न हो। यानी अगर मेरा तेरे में से विश्वास कम हो गया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि तूने शक्ति नहीं दी इसीलिए विश्वास कम हो गया। अब बताओ, तो ये सात बातें ही भगवान से मांगते रहे, मिल गई। कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर वाला फेंकेगा और हम रिसीव कर लेंगे। ही इज द सोर्स, वहां से ही मिलेगा, लेकिन मांगना ये कोई तरीका नहीं है। इसलिए कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख। मांगने से भीख भी नहीं मिलती है, और बिन मांगे मोती मिले। तो ये सात गुण यही तो भगवान से मांगते रहे, और जब ये नहीं मिला तो इंसान क्या करता है, फिर सुसाइड करना चाहता है कि बस ये जीवन में न सुख है, न शांति है, न आनंद है, न प्रेम है, खत्म करो ये जीवन को। इसलिए खत्म करना चाहता है, कोई मुझे समझता नहीं है, खत्म करो इस जीवन को। लेकिन क्या हम अपने आप को समझ रहे हैं? हम अपने आप को भी तो नहीं समझते हैं। जब मैं खुद को नहीं समझती हूँ, मेरी वास्तविकता क्या है ये नहीं समझती हूँ, तो दूसरा मुझे कैसे समझेगा? सोचने की बात है। तो ये सात गुण ये आत्मा की बैटरी है, जिसको गीता के दूसरे अध्याय में कहा, हे अर्जुन स्वधर्म में स्थित हो जा। स्वधर्म सुख का आधार है, पर धर्म दुख का कारण है। पर धर्म यानी सात गुण से पर क्या है? ज्ञान से पर है अज्ञान, जो दुख का कारण है। पवित्रता से पर है अशुद्धि, विकृति, ये दुख का कारण है। प्रेम के विपरीत है क्रोध, स्वार्थ, जो दुख का कारण है। नफरत, जो दुख का कारण है। शांति से पर है टेंशन, जो दुख का कारण है। तो स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख का कारण है। आज हम सभी पर धर्म में स्थित हो गए हैं, इसलिए दुख, और इसलिए बैटरी ज्यादा से ज्यादा डिस्चार्ज हो रही है। तो स्वधर्म में स्थित हो जा। जब आत्मा के ये सातों गुणों में स्थित हो जाएंगे तो सुख का या बैटरी चार्ज होने की अनुभूति होगी। आज मैं आपको दो सिंपल तरीके बताती हूँ बैटरी चार्ज करने के। तैयार? दो सिंपल तरीके। पहला तरीका है बैटरी चार्ज करने का, जो मुझे चाहिए वो मुझे देना होगा। What you give, you get। जो मुझे चाहिए वो सबसे पहले मुझे देना होगा। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ती है, प्रेम बांटने से बढ़ता है। जितना बांटते जाओ बढ़ता जाएगा। तो जो मुझे चाहिए वो देना शुरू करो, मल्टीप्लाई होने लगेगा, है ना? देखो प्रकृति के अंदर सारे तत्व दे रहे हैं, सूर्य दे रहा है, वृक्ष दे रहे हैं, इंद्र देवता दे रहे हैं, है ना? हर तत्व, इसीलिए तो उसको देवता का, सूर्य देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सारे देवता के देने वाले हैं। उनको अपने लिए नहीं चाहिए, वो दूसरों को देने के लिए ही बना है। और इसीलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, पेड़ न खाए अपना फल, नदी न पिए अपना जल, वो दूसरों के लिए देने का कार्य करते हैं, इसीलिए उनको देवता कहा गया। वहां तक कि मनुष्य की बनाई हुई चीजें भी दे रही है। आज ये कुर्सी मनुष्य की बनाई हुई है लेकिन आराम दे रही है? आज अगर सारी कुर्सियों को निकाल करके नीचे बैठने के लिए कहा जाए, हर एक को घुटनों का प्रॉब्लम है, क्या होगा? ज्ञान की इतनी अच्छी बातें भी अगर मैं सुनाऊं तो भी अंदर जाएगी या बार बार घुटनों में जाएगा दिमाग? अरे घुटना दर्द कर रहा है, कब ये पूरा होगा, कब ये पूरा होगा? तो बैठने का आराम दे रही है ना कुर्सी, इंसान की बनाई हुई है ना। ये माइक दे रहा है, ये लाइट दे रही है, ये छत दे रहा है, ये फैन दे रहा है, हर चीज मनुष्य की बनाई हुई वो भी दे रही है। एक इंसान है जो ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है और इस प्रोसेस में देना भूल गया। तो ये सब देवता हो गए और मनुष्य लेवता हो गया, ले रहा है, ले रहा है ना। अब सुख किस में? देने में, लेने में? किस में है सुख? देने में, लेने में? हाँ, लेने में भी सुख क्यों नहीं है? कोई देता है, अच्छी गिफ्ट देता है तो क्यों नहीं अच्छा लगता है, लेकिन देने में ज्यादा सुख है। वो एक कहानी याद आती है छोटी सी, कि एक बार एक राजा, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे उपहार उसको मिलते थे, बहुत ट्रैवलिंग करता था तो काफी गिफ्ट्स उसको देश विदेश से अमूल्य उपहार मिलते थे। इतने अमूल्य उपहार हो गए कि महल में रखने की भी जगह नहीं। तो उसने सोचा अभी इतने उपहार है, उसको क्या करूं? तो किसी ने उसको सजेस्ट किया म्यूजियम बना दो। कहा नहीं, म्यूजियम नहीं बनाना है। तो कहा क्या करेंगे? कहा मैं प्रजा में बांट देता हूं, संभाल के भी रखेंगे, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन दिखाएंगे हमारे राजा ने ये गिफ्ट दिया है और कितनी खुशी होगी। कहा ये तो अच्छा आइडिया है। तो राजा ने ऐलान किया कि मेरे पास इतने अमूल्य गिफ्ट्स हैं, मैं बांटना चाहता हूं, जिसको चाहिए वो संडे के दिन लाइन में खड़े हो जाए और राजा बांटना चालू करेंगे। तो देखा बड़ी लंबी लाइन थी गिफ्ट्स लेने के लिए, किसको अच्छा नहीं लगे, बड़ी लंबी लाइन थी। राजा ने देना शुरू किया, एक एक गिफ्ट बांटना शुरू किया। उस लाइन में एक फकीर था। तो फकीर देखता था कि जब राजा गिफ्ट देता था ना, तो उसके चेहरे पर एक ऐसी प्रसन्नता होती थी, और गिफ्ट लेने वाला जो होता था, लेने के बाद क्या कहेगा? भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको सदा सुरक्षित रखे, आपको निरोगी रखे, स्वस्थ रखे, कोई ना कोई दुआएं देते थे। अब दुआएं जब मिलती है तो सुकून तो होता है, अच्छा तो लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता है। तो राजा के चेहरे पर देने की प्रसन्नता थी और दुआएं प्राप्त करने की आत्मसंतुष्टि थी। तो उस लाइन में जो फकीर था वो ये चेहरे का भाव राजा का देख रहा था, और उसको अंदर में आया, ये भाव तो मैं भी अनुभव करना चाहता हूं, ये प्रसन्नता, ये सुकून में अनुभव करना चाहता हूं, ये खुशी आनंद अनुभव करना चाहता हूं। लेकिन फकीर ने सोचा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं जो मैं इस भाव को अनुभव कर सकूं। उतने में उतना उसका नंबर आ गया। तो जैसे उसका नंबर आ गया तो उसने पीछे वाले को कहा, आप आगे जाना चाहेंगे? कौन नहीं जाना चाहते? तो वो पीछे वाला आगे हुआ और आगे जाते हुए उसको कहते हुए गया, भगवान आपको भी सदा खुश रखे। उसको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। तो दूसरे को कहा, आप आगे जाएंगे? कहा क्यों नहीं। वो भी जाते जाते उसको कहा, भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे। ऐसे एक एक को टर्न देने लगा वो, और एक एक उसको भी दुआएं देते गए। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहा था और बड़े सुकून का अनुभव कर रहा था, और चला गया, उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दिन राजा ने अपने गुप्तचरों को कहा, जरा नगर में घूम के तो आओ, देखो तो सही लोग मेरे लिए क्या बात कर रहे हैं। तो गुप्तचर गए तो लोग बात कर रहे थे कि भाई हमारा राजा कितना अच्छा है, इतने अमूल्य उपहार दिए, बड़ी महिमा बड़ी तारीफ कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने कहा, अरे उस लाइन में एक फकीर भी था, उसने कुछ नहीं लिया लेकिन उसने भी हरेक को आगे किया, एक एक को आगे करता गया, उसकी भी तारीफ हो रही थी। तो गुप्तचरों ने आकर राजा को सुनाया कि आपकी तो सब खूब तारीफ कर रहे थे लेकिन आपके साथ साथ एक फकीर की भी तारीफ हो रही थी। कहा उसने क्या दिया? कहा नहीं, उसने कुछ नहीं दिया, उसने टर्न दिया, अपना टर्न दूसरों को देता रहा और उसने कुछ लिया नहीं, चला गया। तो कहा उस फकीर को ले आओ। तो कहा अभी वो तो कहां मिलेगा, कहां चला गया होगा क्या मालूम। तो राजा ने फिर ऐलान कर दिया, और भी अमूल्य उपहार है, जिसको चाहिए अगले संडे आ जाए। तो अगले संडे फिर लंबी लाइन लग गई, फिर वो फकीर आ गया, फिर वो अपना टर्न देना शुरू कर दिया उसने। राजा ने जैसे देखा उस फकीर को, उसको बुलाया, इधर आओ, तेरे को जो चाहिए वो लेके जा तू, लेकिन ये टर्न देने का काम नहीं कर, है ना। भावार्थ ये कि जब हम किसी को कुछ देते हैं, कोई चीज वस्तु देने की बात नहीं कर रही हूं मैं, उसके सिवाय भी बहुत कुछ दे सकते हैं, किसी को सम्मान दे सकते हैं, किसी को सहयोग दे सकते हैं, किसी को खुशी दे सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को उमंग उत्साह के शब्द कह सकते हैं, किसी को शुभ भावना शुभकामना दे सकते हैं। देना तो चालू करो, देखो क्या होता है। द मैजिक ऑफ गिविंग, आपकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी, इतनी खुशी मिलेगी। और एक खुशी भी आ गई तो देखो बाकी सारे गुण जो है ये सातों गुण आ जाएंगे। और जितना ये बैटरी फुल चार्ज होगी ना, आपके जीवन में डिप्रेशन नाम की चीज कभी आ नहीं सकती है, आपके जीवन के अंदर कभी कोई भी प्रकार के उदासी गम आ नहीं सकती है। इतनी खुशी खुशी से एक एक पल आपका व्यतीत होगा और जीवन का रियल आनंद आप अनुभव कर सकेंगे। तो बैटरी चार्ज करने का पहला तरीका है स्टार्ट गिविंग, देना चालू करो। और देना चालू करते ही आप खुद अनुभव करेंगे कितना आनंद मिलता है। ये पहला तरीका बैटरी चार्ज करने का। दूसरा तरीका है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। चिंतन की क्वालिटी देखो, चिंतन की क्वालिटी क्या है? नेगेटिव चिंतन है, व्यर्थ चिंतन है, पॉजिटिव चिंतन है, कौन सी क्वालिटी है चिंतन की क्वालिटी, ये देखो। और जितना आपका चिंतन श्रेष्ठ होगा, शुभ होगा, उतना आपकी बैटरी सहजता से चार्ज होने लगेगी, है ना। तो थोड़ी देर के लिए हम सभी मेडिटेशन में बैठेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, बैटरी चार्ज करेंगे अपने, और जो आत्मा के सात गुण बताए उस सातों गुणों में अपने मन को स्थित करना है। चिंतन के माध्यम से जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो जीवन की क्वालिटी आज से हम बदलेंगे अपनी बैटरी चार्ज करते हुए। और यहां से आप जब जाओ तो जो कहा विजडम फॉर अ न्यू एरा, आज वो विजडम आपने पाई है, अपनी वास्तविकता में स्वयं को स्थित करेंगे, सातों गुणों का स्वरूप बनेंगे और वो सातों गुणों के वाइब्रेशंस को बांटना चालू करना है और खुद की बैटरी भी चार्ज करना है, दूसरों की बैटरी भी चार्ज करना है, अपने घर के सारे वातावरण को चार्ज करना है। तो जब यहाँ से जाओ, लोग कहे क्या ब्रह्मा कुमारियों ने जादू किया जो बदल गया ये। तो लोग वैसे भी कहते हैं, लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां जादू करती है। जादू लग रहा है आपको? लग रहा है ये जादू अच्छा है या नहीं है? अच्छा है। तो ऐसा जादू लगे जो आपका घर, आपके घर का वातावरण, आपका कार्य क्षेत्र सब परिवर्तन हो जाए, तो ये जादू तो अच्छा है या बुरा है? बैटरी चार्ज होने वाला अगर जादू आ जाए, ये जादूगरी आ जाए और हमेशा चार्ज रूप में रहो, तो कैसा रहेगा जीवन? तो ये जादूगरी अच्छी है या नहीं है? ये जादूगरी हम सिखाते हैं यहाँ से, और जो ये जादूगरी सीख लेता है उसका जीवन ही परिवर्तन हो जाता। तो ये जादू तो अच्छा है या नहीं है? हाँ, तो ये जादू हम अपना आज अनुभव करेंगे अपने चिंतन से। मैं खाली आपको चिंतन देती जाऊंगी, आपको रिपीट नहीं करना है, लेकिन उस शब्दों के भाव में अपने आप को ले जाना है। ठीक है? ठीक है, तो चिंतन से अपनी बैटरी को चार्ज करना है। तो कुछ क्षण के लिए बाह्य सभी बातों से अपने मन को समेट लेते हैं, बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी बनते हैं, और अपने मन को श्रेष्ठ दिशा दे चिंतन की। आत्मचिंतन की ओर स्वयं को ले चले, अंतर चक्षु से स्वयं को देखो, ब्रुकुटी की मध्य में मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से अलग न्यारी सर्व कर्मेंद्रिय की मालिक। अंतर चक्षु से अपने दिव्य स्वरूप को देखें, मैं आत्मा ज्योति पुंज प्रकाश पुंज मैं आत्मा अपनी वास्तविकता में स्थित हूं। मेरा वास्तविक स्वरूप शुद्ध और पवित्र है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में पवित्र स्वरूप मेरे चारों ओर पवित्रता का आभा मंडल है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित, मेरा गुण धर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मेरा तन और मन दोनों रिलैक्स्ड है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन को महसूस कर रही हूं। इतनी शांति है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख स्वरूप इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा सत्चित आनंद स्वरूप। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। ज्ञान स्वरूप। सत्व गुण स्वरूप में स्वयं को स्थित करते हुए चारों ओर सातों गुणों की ऊर्जा को प्रकंपित करती हूं। सुंदर अनुभव है। अनेक आत्माओं तक इसको प्रकंपित कर सारा दिन मुझे हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है। देवता बनना है।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपका। आपने सत्य स्वरूप की पहचान कराकर द डिवाइन विजडम फॉर न्यू एरा इसका संपूर्ण उल्लेख आज किया। बहुत ही सरल स्पष्ट शब्दों में आपने ये दर्शा दिया हमें कि आत्मा की वास्तविकता, ये सात गुण हैं जो जीने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। हम दीदी जी का फिर से एक हाथ की ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे।